आप सुन रहे हैं हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट।
हेल्थ शॉर्ट्स पॉडकास्ट हेल्दी जिंदगी सीजन 2 के नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी होस्ट योगिता यादव, एडिटर हेल्थ शॉर्ट्स हिंदी। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर बार आपके लिए वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जो आपके लिए हेल्दी जिंदगी की राह और आसान बना सकें। अपने इसी वादे के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं।
दोस्तों, योग जीवन का आधार है। ये तन मन को स्वस्थ रखने का प्राचीन भारतीय अभ्यास है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का एक ऐसा अभ्यास जो आपको बहुत सारे बीमारियों से बचा सकता है। योग पर आधारित इस स्पेशल पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं जानी मानी योग विशेषज्ञ एवं आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रतिष्ठा। आचार्य प्रतिष्ठा, स्वागत है आपका हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट में।
धन्यवाद योगिता जी, धन्यवाद।
आचार्य प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी पर्सनालिटी असल में वर्सेटाइल है। वे डिप्लोमेट रह चुकी हैं, लेखन करती हैं और क्लासिकल डांस भी सिखाती हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं योग के बारे में। अब से एक दशक पहले तक योग के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत आध्यात्मिक चीज है और योगियों के बारे में सोचने लगते थे जब भी हम योग पर बात करते थे, लेकिन अब यह धीरे धीरे फिटनेस प्रैक्टिस बन गया है। आप एक योगा गुरु होने के नाते, एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते योग के बारे में क्या कहेंगी कि योग वास्तव में क्या है?
बहुत सुंदर प्रश्न योगिता जी। योग की बहुत जटिल से जटिल परिभाषाओं में भी जा सकते हैं कि योग कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्चते या संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनः। लेकिन बिल्कुल एक लेमैन्स लैंग्वेज में कहूँ तो आपने अक्सर देखा होगा एक अंग्रेजी की मार्कशीट होती है जिसमें नीचे लिखा होता है टोटल, फिर एक हिंदी की मार्कशीट होती है जिसमें नीचे लिखा होता है योग। तो योग का अर्थ ही है टू यूनाइट, योग का अर्थ है जोड़ना, और योग का सबसे बड़ा अर्थ है जीवन को संपूर्णता में जीना। यानी अगर मैं सिर्फ तन की दुरुस्ती की बात करूं तो वो तंदुरुस्ती रह जाएगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य का अर्थ है जहां मेरा तन भी दुरुस्त है, मेरा मन भी दुरुस्त है और मेरी आत्म उन्नति भी हो रही है। इसलिए योग को सबसे बड़ा अध्यात्म माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि योग की जो प्रारंभिक परिभाषा है वही है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनः, आत्म से परम आत्म तक की यात्रा। सो आत्म से परम आत्म क्या है? आत्म मीन्स सेल्फ, आत्म, और परम आत्म मेरा बेस्ट वर्जन। तो मैं अपना बेस्ट वर्जन शरीर के धरातल पर, मन के धरातल पर, आत्म के धरातल पर कैसे बनता हूँ, वही योग है। और हम सब यही तो चाहते हैं, जिसने ट्वेल्थ कर ली वो टेंथ के एग्जाम तो नहीं देना चाहेगा, वो चाहेगा मैं ग्रेजुएशन करूँ। तो हम जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और योग बस वही बढ़त है, लेकिन संपूर्णता में। ये नहीं कि सिर्फ हम फाइनेंसेस में बढ़ रहे हैं, सिर्फ हम बॉडी तो बाहर बाहर से बना रहे ले रहे हैं लेकिन अंदर से हम अस्वस्थ हैं। तो जब हम संपूर्णता में जीवन में उन्नति करते हैं उसी को हम योग कहते हैं।
बहुत सुंदर जवाब आचार्य प्रतिष्ठा। एक सामान्य व्यक्ति अगर अपने जीवन में, जैसा आपने कहा कि वो अपना बेस्ट वर्जन बनना ही योग है, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में योग को कैसे शामिल कर सकता है?
हाँ, आप देखिए ना योगिता जी कितने सुंदर तरीके से इस पॉडकास्ट को कवर कर रही हैं। तो आप इस वक्त कर्म योग कर रही हैं, यानी योगा कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन व्हाटएवर वी आर डूइंग। अगर मैं एक माँ के रोल में हूं तो मैं उस माँ का रोल जब परफेक्टली निभा रही हूँ तो मैं योगी। जब मैं गुरु के पद पर हूँ तो मैं उस गुरु के रोल को परफेक्टली निभा रही हूँ, मैं एक योगी हूँ। एक राजनीतिज्ञ राजनीति परफेक्टली कर रहा है तो वो योगी है। तो सरल भाषा में कहें तो जब हम जीवन को डिटैच्ड भाव से जीने लगते हैं, अभी होता क्या है, हम बात तो अभी योगिता जी की और हमारी बात हो रही है लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, ओहो इस पॉडकास्ट के बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, हम आज में नहीं जी रहे। योग का सबसे बड़ा उद्देश्य है लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जो अतीत में जीता है वो तनाव में जीता है, जो भविष्य में जीता है वो एंग्जाइटी में जीता है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यही तो एंग्जाइटी, इसी को तो एंग्जाइटी कहते हैं हम। तो योग का सबसे बड़ा उपदेश ये कि जो मेरे हाथ में है वो आज है, अतीत को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, भविष्य का तो बोध ही मुझे नहीं है कि क्या होने वाला है. सो दिस प्रेजेंट मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट. लेकिन ये कहना बहुत आसान है, बट इसको जो पाने की जो प्रक्रिया है वही योगिक प्रक्रिया है, जिसमें हम पहले शरीर को साधते हैं आसन के द्वारा, फिर मन को साधते हैं ध्यान के द्वारा, फिर सांस को साधते हैं प्राणायाम के द्वारा, और जीवन को साधते हैं योग फिलॉसफी के द्वारा. तो जब हम जीवन में बैलेंस्ड लाइफ को जीते हैं और हर रोल को परफेक्टली निभाते हैं, तब हम सही मायने में योगी बनते चले जाते.
तनाव और एंजाइटी, आपने दो चीजों का जिक्र किया अतीत और भविष्य के हवाले से, क्या योग इन दोनों को कंट्रोल करने में किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है?
एब्सोल्युटली, सिर्फ और सिर्फ योग ही मदद कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता. अभी क्या हो गया ना, मानसिक रोगों को हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि नहीं नहीं ये तो डिप्रेस्ड है. डिप्रेशन इज डिफरेंट, जिसे हम अवसाद कहते हैं. एंग्जाइटी इज डिफरेंट, तनाव इज डिफरेंट. तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और योग में इसका समाधान. अच्छा बताइए योगिता जी, अगर योग में इसका समाधान ना होता तो रणभूमि के मैदान में जो सबसे बड़ा योद्धा है ना, जिसकी ट्रेनिंग ही युद्ध के लिए हुई है, धनुर्धर है अर्जुन, वो जब उसको एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका आता है तो वो शस्त्र त्याग देता है, अवसाद की स्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन की हाइट में पहुंचा हुआ है, और वो कह रहा है कि कृष्ण मैं लड़ नहीं सकता हूँ. वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, अर्जुन उठ और अपना कर्तव्य कर. यही एक योगी का कर्तव्य है, एक योगी बन. तो विशेष रूप से जो हमारी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, अगर प्रैक्टिकल जीवन में कहें, सबसे पहली चीज सूर्य का सानिध्य है, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा कहती हूँ कि एसी ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है. मतलब हम एसी गाड़ियों में बैठते हैं, एसी ऑफिसेस में बैठते हैं, एसी ट्रैवल करते हैं, 24 घंटा एसी में. थोड़ा सा अपने घरों से निकलिए, शुद्ध हवा लीजिए, प्रकृति का सानिध्य लीजिए, 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. तो अगर मानसिक रोग है, आप 20 मिनट सनलाइट लीजिए, आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर कीजिए, फिर आप प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज थोड़ा सा गीता का अध्ययन जरूर करें. वो हमारे मानसिक रोगों से हमें बाहर निकालती है. और अक्सर एक मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं इफ यू आर डिप्रेस्ड, अगर आपको मानसिक रोग है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जबकि योग फिलॉसफी में मानसिक रोगों के लिए मेडिटेशन प्रोहिबिटेड होती है, स्पेशली डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जब भी वो मेडिटेट करेंगे तो फिर से वो उसी वैक्यूम की तरफ जाने लगेंगे. सो इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन वी प्रेफर डूइंग ऑटो सजेशंस, देन योग निद्रा का अभ्यास करें, और जितनी भी मोर एक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हुआ, जैसे सूर्य का सानिध्य हुआ, ये हमको तनाव और डिप्रेशन में अपनाना चाहिए.
आपने एक बहुत जरूरी बात की तरफ ध्यान दिलाया कि मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादातर लोग मेडिटेशन की सलाह देते हैं, जबकि मेडिटेशन मेंटल हेल्थ में अगर आपको समस्या है तो योग उसकी सलाह आपको नहीं देता है, है ना. मैं चाहूंगी कि आप और ऐसी ही बेसिक चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिलाएं. वजह, क्योंकि आजकल क्वैक्स बहुत सारे हैं, डिजिटल स्पेस में इतना सारा कंटेंट है कि लोग उसको पढ़ रहे हैं और यूज कर रहे हैं, सेल्फ मेडिटेशन कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं. तो योग के वो बेसिक नियम क्या है जिसका किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने दोनों बड़ी प्यारी बात कही, सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं, सेल्फ मेडिटेशन भी कर रहे हैं. तो डॉक्टर भी बेचारे यही कहते हैं भाई खुद से दवा मत खाओ, और हम भी यही कहते हैं कि गुरु पदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत. शास्त्र कहते हैं कि गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की विद्या को अपनाना चाहिए. अब इससे बड़ी विडंबना योगिता जी और क्या होगी कि चलिए, एक डॉक्टर तो जो जनरल फिजिशियन भी बनता है 6 साल की ट्रेनिंग के बाद बनता है, एक नर्तक डांसर भी बनता है तो कम से कम 6 साल की ट्रेनिंग के बाद बनता है, लेकिन योग गुरु जो है वो एक हफ्ते में बन जाते हैं कि हमने एक हफ्ते की टीचर ट्रेनिंग कर ली. ये गलत ट्रेंड है और हमें क्रेडेंशियल्स बिल्कुल चेक करने चाहिए कि जिनसे हम सीख रहे हैं वो खुद, और वो तो आपको ऐसा है ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपको देख के पता लग जाएगा अब ऐसा तो नहीं हो कि हमारा तो चेहरा मुरझाया हुआ है और हम आपको कहीं देखिए आप ऐसा करिए तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, हम खुद जो है टेंशन में है, थके हारे बाल वाल एकदम झड़ गए और हम आपको ये करो तो तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे, ये करो तो तुम फिट हो जाओगे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप देख के बता सकते हैं ये योगी है या ये भोगी है। तो जब भी आप अभ्यास करें कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। पहली चीज, योग के किसी भी सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर के साधना नहीं करनी चाहिए। मतलब हम सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, हम आसन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, शरीर खराब होगा। हम सिर्फ आसन कर रहे हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम प्राणायाम नहीं कर रहे, शरीर खराब हो जाएगा। हम रिलैक्सेशन नहीं कर रहे, या हम सिर्फ प्राणायाम कर रहे हैं, हम आसन नहीं कर रहे, हम ध्यान नहीं कर रहे, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली चीज, योग को समग्रता में अपनाएं। दूसरा नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि योग की साधना खाली पेट ही की जानी चाहिए। हालांकि सूत्र ये भी आता है कि खावत पीवत सोवत जागत नेको विसर मिल जाए, मतलब आई हैव टू बी अ 24 आवर योगी, यानी मेरे आचरण में योग तो 24 घंटे हो। लेकिन जब मैं योग अभ्यास की बात करता हूं तो मुझे सुबह या शाम खाली पेट अभ्यास करना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आजकल योग शिक्षक भी नहीं बताते, दुर्भाग्य है, वो ये है कि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जो जड़ है वो मल है। मल, आंख से मल निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है, कान से निकलता है, त्वचा से निकलता है और आपके पेट से मल निकलता है ना। तो जब वो मल शरीर से नहीं निकल रहा तो वो रोग बन जाता है। पूरी फिलॉसफी जो डिजीजेस की है, डिजीज मींस डिस ईज, जब मेरा ईज जो है वो गड़बड़ हो गया तो मैं डिजीज हूं। तो जो हमारा मल है वो बाहर, तो योगाभ्यास करते हुए, अभी जैसे कंबाइंड क्लास हो रही है, किसी ने गैस पास कर ली तो बाकी हंसने लग जाएंगे, बट वो आप अभ्यास कर ही इसीलिए रहे हो कि वो मल निकले, नासिका से मल। यानी अगर आपको अभ्यास के बीच में यूरिन डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है, आपको गैस पास हो रही है, खांसी हो रही है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, नेवर होल्ड इट, क्योंकि वो मल ही हमको अभ्यास के माध्यम से निकालना है। ये बहुत सरल से नियम है। और योगाभ्यास जो है वो या तो हमको व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के करना चाहिए या येलो या ऑरेंज, क्यों? क्योंकि ये सन कलर्स है, तो ये हमारे अंदर सूर्य की ऊर्जा को ज्यादा जागृत करते हैं। लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े, अभी ये भी एक ट्रेंड चला, एकदम कसा हुआ कपड़ा पहन करके अभ्यास करने लगे, वो भी योग की फिलॉसफी के अनुरूप नहीं है। यानी योग सबसे सहज है, आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। और योग सिखाता भी यही है कि हम एक नेचुरल जीवन जिए, हम आर्टिफिशियल जीवन से बाहर निकले।
ये तो और भी मजेदार चीज है जो आपने बताई, क्योंकि आजकल बेस्ट योगा मैट, योगा टायर, योगा फैब्रिक, इसका खूब बढ़िया बाजार आजकल चल रहा है। तो कम से कम इन चीजों की आपको जरूरत नहीं है अगर आपको सचमुच योगा अभ्यास करना है। हम थोड़ा सा महिलाओं की तरफ आते हैं आचार्य जी। महिलाएं इतना ज्यादा काम करती हैं, अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा कर्म उनके जीवन पे हावी रहता है, लेकिन इस कर्म के चक्कर में उनकी अपनी सेहत बहुत नेग्लेक्ट हो जाती है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? उनको अपना अपनी डेली रूटीन, अपनी दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए ताकि वो इस सब के लिए भी समय निकाल सके?
बिल्कुल, देखिए समाज की, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की स्पाइन होती है रीढ़, तो रीढ़ को मेरुदंड कहा गया, सो दैट्स द पिलर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। अगर रीढ़ खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा शरीर खराब हो जाता है। आजकल आप देखेंगे महिलाओं की मैक्सिमम रीढ़ से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। और इसी तरह से समाज की जो रीढ़ है वो तीन अ को बताया गया, अध्यापक, अफसर, औरत, इन तीनों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों गड़बड़ हो जाएंगे तो समाज गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मातृशक्ति तो वो है जो समाज की निर्माता है। आप तो उनको बनाने वाली है जो भविष्य को बनाने वाली है, राइट? तो अगर आप का स्वास्थ्य खराब है तो समझिए पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। पर होता उल्टा है, माताओं को इतना समर्पण भाव बचपन से सिखाया गया, एंड दे आर, ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी इज क्रिएटेड इन सच अ वे दैट इफ वी कंपेयर अ मेल बॉडी एंड अ फीमेल बॉडी, तो महिलाएं जो हैं वो मल्टीटास्किंग की एक्सपर्ट होती है, वो एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकती है, पर वो मल्टीटास्किंग इतनी हावी हो जाती है कि कभी कभी वो अपने बारे में ना सोचकर बस दूसरों के लिए ही करती रह जाती है। तो यहाँ महिलाओं को एक जागरूकता लाने की जरूरत है, और भारत योग के माध्यम से हमारे यहाँ तो मैक्सिमम फीमेल योग आचार्य हैं जो ये काम कर भी रहे हैं। सिर्फ ये समझ लीजिए, आप खुश हैं तो आपका परिवार खुश है, और आपका वर्क स्पेस भी खुश है। आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार भी स्वस्थ है, आपका वर्क स्पेस भी स्वस्थ है। आप अस्वस्थ हो जाएंगी तो सारी की सारी सामाजिक व्यवस्था भी अस्वस्थ होती जाएगी। इसलिए बस ये याद रखो, हम तो हमेशा कहते हैं हम शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है योगाभ्यास। क्यों? एक घंटा देना है और बचे हुए 23 hours 46 hours में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट इंक्रीजेस डबल्स योर वर्किंग कैपेसिटी। तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट और क्या है कि आपको 23 घंटे में 46 hours का काम कर पा रहे हैं। फिर एक बड़ी प्यारी टेक्निक होती है भारतीयों, जिसको नाम दिया गया योग निद्रा। तो भारतीयों की योग निद्रा बड़ी प्रचलित है, टेलीविजन चैनल्स पर, यूट्यूब पर, काफी जगह उपलब्ध है। इट्स जस्ट अ 10 मिनट ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस अगर हम 20 मिनट करते हैं तो ये हमारे 5 घंटे की नींद जितना आराम हमको दे देती है। तो सोचिए इससे बड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने ये टेक्निक हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे पिताजी से सीखी थी, क्योंकि उनके पास समय नहीं हुआ करता था। तो महिलाएं तो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। इट्स अ सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस। दरअसल क्या होता है योगिता जी, आपके शरीर में एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है। हमें लगता है कि हम हील दवाओं से करते हैं या बाहरी चीजों से करते हैं, बट आप हील अपनी इनर प्राणिक शक्ति से करते हैं। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो कोई दवा नहीं है हड्डी को जोड़ने की, वो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टर कर देंगे, पेन किलर दे देंगे, मसल रिलैक्सन दे देंगे, लेकिन हड्डी जोड़ने का काम आपकी हीलिंग पावर कर रही है। योग में हम उस ही हीलिंग पावर को यूज करके भीतर से हीलिंग करते हैं। वो संभव कब है? जब आपका बॉडी स्टिल होता है। तो योग निद्रा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हमारी इनर हीलिंग डेवलप होती है। तो महिलाओं को योग निद्रा जरूर करना चाहिए, महिलाओं को अट्टहास जरूर करना चाहिए। माताएं हंसने में डरने लगी हैं, हंसती नहीं है अभी, यू नो वी हैव जनरलाइज्ड स्ट्रेस। आपके वर्क स्पेस पे आप देख लीजिए, कोई आपको आकर के कहेगा अरे योगिता जी आज बहुत टेंशन है, आपको एकदम सिंपैथी हो जाएगी, बिकॉज वी हैव जनरलाइज्ड टेंशन, वी हैव जनरलाइज्ड स्ट्रेस। वहीं आपके वर्क स्पेस पे कोई दिल खोल करके हंसे आपको लगेगा अरे तो मूर्ख हो गया है, ये क्यों ऐसे हंस रहा है, जबकि हास जनरलाइज करना है। तो अट्टहास में हम पेट को ढीला छोड़ देते हैं, लंग्स को ढीला छोड़ देते हैं, भी प्रैक्टिस फ्री लाफ्टर फॉर 30 seconds, यानी पूरे सीना ढीला छोड़ा और फिर ये हमको 30 सेकेंड तक बिना रुके करना है। आप देखेंगे आपका इंस्टेंट फेशियल ग्लो आ जाएगा, आपकी एनर्जी अपवर्ड होगी, खोपड़ी की तरफ जाएगी, आपकी थकान दूर हो जाएगी, एंड यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश फॉर द रिमेनिंग डे। तो लंच टाइम में तो आप अपने दफ्तर में भी ये करवा दीजिए अपने कोलीग्स को भी, और निंदा सेशन नहीं करना, हम बैठे ना ऑफिस में बॉस की निंदा और ये सब करते हैं, वो नहीं। इस टाइम पे हम हंसेंगे, हम खुश होंगे, तो आप देखेंगे वो एक्चुअल में आपका मिड टाइम होगा जो बचे हुए आधे दिन को भी बहुत एनर्जाइज कर देगा।
वेरी गुड। एक और समस्या जो है महिलाओं की, वेट लॉस, वजन बहुत बढ़ जाता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, कभी वो स्ट्रेस के कारण, कभी मेनोपॉज के कारण। क्या योग या योगाभ्यास या योग निद्रा वेट लॉस को किसी तरह कर सकते हैं काम?
बहुत सरल से 4-5 नियम वेट लॉस के हम अपनाते हैं। हमारा भारतीयों का एक बहुत प्रचलित वेट लॉस प्रोग्राम भी है जो सेंटर्स पर भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, बट हम तो कहते हैं वहां भी मत आओ, जो हम ऐसे ही बता रहे हैं उसी से आपका वजन काफी कम हो जाएगा। पहला नियम ये है कि आप अपने भोजन का समय निर्धारित कीजिए, फिक्स अ टाइम दैट आई हैव टू टेक माई लंच एट दिस टाइम, ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम, डिनर एट दिस टाइम। दूसरी चीज, किसी भी फैट डाइट में मत पड़िए कभी, कोई भी ऐसी चीज जो टेम्पररी है जिसे आप परमानेंटली नहीं अपना सकते उसमें हमको नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी चीज, भोजन का बहुत सरल सा नियम है, आपका जो हंगर है मतलब आपका जो पेट है वो आधा भोजन से फिल्ड होना चाहिए, 1/4 वायु के लिए जगह छोड़नी चाहिए, 1/4 वाटर के लिए जगह छोड़नी चाहिए। अब होता क्या है, वायु के लिए जगह नहीं छोड़ते, फिर खुद वायु छोड़ते हैं, है ना, फिर आसपास वाले बहुत गैस हो रही है, अरे आज मैंने ओवर ईटिंग कर ली, अरे एसिडिटी हो गई, क्यों? क्योंकि वायु के लिए स्थान नहीं छोड़ा। तो अब इस नियम को, नियम तो पता लग गया बट हम इसको जीवन में कैसे अपनाएं, तो उसके लिए हम भारत योग में बड़ा सिंपल सा तरीका लेते हैं। लेट्स से मेरा लंच का टाइम है 1 बजे, ठीक है, तो हम 12:30 बजे 2 ग्लास पानी पिएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हंगर और थर्स्ट में कंफ्यूज हो जाते, लाइक हमें पता ही नहीं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, हम प्यास को भूख समझते हैं। तो 12:30 बजे यानी भोजन से आधा घंटा पहले 2 ग्लास पानी पीजिए, उसके 15 मिनट बाद रॉ फूड लीजिए, सैलेड्स, फिर आप 1 बजे लीजिए खाना, और कितना? भूख से आधा। मतलब अगर आपका एपेटाइट 2 रोटी का है, 1 रोटी लीजिए। 1 प्लेट चावल का आप आधा प्लेट लीजिए। अब आपने जल का स्थान पूरा कर लिया, वायु का स्थान छोड़ दिया। फिर भोजन के तुरंत बाद 2 मिनट के लिए वज्रासन में, या 30 सेकेंड्स 1 मिनट वज्रासन में बैठिए। अगर ऑफिस में वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो तसल्ली से थोड़ी देर बैठ जाइए, और फिर 20 मिनट्स का माइल्ड वॉक कीजिए। अगर हम तीनों मील्स के बाद 20 मिनट का माइल्ड वॉक, जिसे हम टहलना कहते हैं, वो कर लेते हैं, तो हमारा 1 घंटे का वॉक हो गया पूरा। आपको अलग से वॉक की भी जरूरत नहीं पड़ी। आप सिर्फ ये नियम, और चौथा नियम हमारा ये है कि हमको रात्रि का जो भोजन है वो 7 बजे तक कर लेना। बस ये 4 नियम आप अपना लीजिए, आपका वजन कभी नहीं बढ़ सकता, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये बात आती है कि अब मुझे पेट कम करना है, मतलब वजन तो मेरा कम हो गया, अब मुझे आम का फैट रिड्यूस करना है, अब मैं चाह रहा हूँ मेरा वेस्ट साइज रिड्यूस हो जाए। उसके लिए फिर स्पेसिफिक योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो आपको विशेष मार्गदर्शन में प्राप्त करनी चाहिए। हमारे 1.5 मिलियन की यूट्यूब फैमिली है, वहां पर ऐसे बहुत सारे फ्री वेट लॉस प्रोग्राम्स हमने अपलोड किए हुए हैं, वहां जाकर के सभी लोग उसका लाभ निश्चित रूप से फिर ले सकते हैं। बट ये बेसिक रूल्स आप अपना लीजिए, आपका 5-6 किलो वजन तो वैसे ही कम।
महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या है मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स के को लेकर हमारा जो समाज है उसकी अवधारणा एकदम अलग है, और डॉक्टर्स एकदम अलग सलाह देते हैं। तो आप क्या कहती हैं कि पीरियड्स में योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
हम क्या कहते हैं, ये तो योग के शास्त्र कहते हैं। पीरियड्स में विशेष रूप से, सिर्फ पीरियड्स की बात नहीं है, किसी भी उपद्रव की स्थिति में, यानी अगर आपको कोल्ड एंड कफ हुआ हुआ है, एक आपको रहता ही है हमेशा, भाई हमको हमेशा ही कोल्ड एंड कफ रहता है, उस स्थिति की बात नहीं कर रहे, आपको कोल्ड एंड कफ हुआ है, आपको बुखार हुआ है, आपको मोच आ गई है, आप पीरियड से हैं, इस तरह के जो भी उपद्रव जो कुछ समय के हैं, 2 से 3 दिन का जो समय है, वो हमारा रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। जो हम योग साधना के नियम बताते हैं उसमें सबसे पहले यही चीज आती है कि हमको पीरियड्स में भी 1st 2 डेज का रेस्ट लेना चाहिए। 3rd डे हमको बहुत माइल्ड प्रैक्टिसेस, जिसमें कमर की स्ट्रेचिंग हो, बेंडिंग हो, थोड़ा बहुत माइल्ड प्राणायाम, और 4th दिन से आप रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। और उसका कारण बहुत सरल है कि इसमें हमारा जो ऊर्जा, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, मतलब जब हम योगिक फिलोसफी को पढ़ते हैं तो 5 पंच प्राण है, 5 ही कोश है, 5 ही एलिमेंट्स है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ ब्रह्मांड में है उसी से तो शरीर बना हुआ है ना, तो 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 ही हमारे मुख्य चक्र हैं, जो शरीर के चक्र हैं, फिर 6ठा 7वां चक्र हमारा आज्ञा और सहस्त्रार, शरीर से ऊपर आत्म या मन की स्थिति में जाने वाला चक्र होता है। तो 5 हिस्सों में हमारा शरीर पूरी तरह से विभाजित है। तो इसमें जब कोई भी महिला पीरियड्स जो मासिक धर्म से होती है, तो हमारी ऊर्जा डाउनवर्ड होती है, इसीलिए ब्लीडिंग नीचे से हो रही है। सो वो जो एनर्जी का फ्लो डाउनवर्ड है, उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे एनर्जी अपवर्ड हो। जैसे आप देखिए, जितनी भी योगिक प्रैक्टिसेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एनीवे हमारी एनर्जी डाउनवर्ड रहती है, राइट? तो हम, आप 24 घंटे में एक आम आदमी ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ हो, जिससे एनर्जी का फ्लो खोपड़ी की तरफ हो। फिर क्या होता है, आंखें कमजोर होती हैं, स्किन स्टेज हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, स्ट्रेस टेंशन बढ़ता है। तो योगाभ्यास में आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिसेस वो होती है जिसमें एनर्जी अपवर्ड जाती है, जिससे हमारे ये एलिमेंट्स दूर होते हैं। इसलिए पीरियड्स में विशेष रूप से 2 से 3 दिन का रेस्ट, 2 दिन का तो हमको लेना ही लेना चाहिए, फिर 3rd दिन से आप अपनी माइल्ड प्रैक्टिसेस शुरू कर सकते हैं। और जो योगिता जी आपने सामाजिक दृष्टिकोण की बात की, उसका भी विज्ञान यही है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान, हमारी संस्कृति में स्त्री और पुरुष में संस्कृति को कभी नहीं बांधा गया, वहां आत्मन का कॉन्सेप्ट है, आत्म की ही बात की गई है। तो ये जो प्रावधान किया गया, ये भी इसीलिए किया गया था कि एक समय में महिलाओं का मुख्य कार्य जो है वो मंदिर और किचन की देखरेख हुआ करता था, तो उनको रेस्ट देने के लिए ये प्रावधान बना, नहीं 2-3 दिन तुम रेस्ट करो और ये काम से छुट्टी। अब वो रेस्ट देने के लिए शुरू की गई चीज, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है कि फिर उसके विकृत रूप निकल करके सामने आते रहे, और हमने मान लिया नहीं, महिला जो है यहाँ तो छूत अछूत की बात हो गई है। तो ऐसी फिलॉसफी हमारी ना कभी रही है न कभी हो सकते। हम तो गार्गी मैत्रेय की संस्कृति के हैं और ये तो वो संस्कृति है जहाँ एकमात्र संस्कृति जहाँ महिला पुरोहित भी आपको मिलेंगी, महिला गुरु भी मिलेंगी, महिला आचार्य भी मिलेंगी। तो हमारी संस्कृति में ये भेदभाव नहीं है। पर हाँ, मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि महिला जो है वो रूल करे, तो वो बस बीच बीच में ऐसे छोटी छोटी चीजें छोड़ते रहते हैं, उसके अलावा उसके कोई तथ्य आधार नहीं है।
आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आप देखिए जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें भी, अगर हम अध्यात्म में भी देखें तो आचार्य प्रतिष्ठा जैसी फीमेल गुरु बहुत कम दिखती है, पुरुषों की संख्या बहुत अधिक दिखती है।
हाँ, ये सच है, ये सच है। और मुझे लगता है महिला के लिए किसी भी क्षेत्र में अपना स्थान बनाना हमेशा से एक युद्ध स्तर का काम रहा है और आगे भी रहेगा। ये इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते, दिस इज वर्ल्ड वाइड, मतलब ये तो यूनिवर्सल है। लेकिन शायद पहली महिला योगाचार्य आचार्य प्रतिष्ठा रही, लेकिन आचार्य प्रतिष्ठा के बाद इतनी सारी अब महिला आचार्य हो गई हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक हम महिलाओं को इस क्षेत्र में ला पाए। ये भारत की एक मुहिम बहुत समय से चल रही है। हम तो कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जीवंत उदाहरण है। हमारे पिता की पुत्री थी और उन्होंने पुत्र का वेट नहीं किया कि मैं अपना लीनेज वहां पर दूं। तो मुझे लगता है सोच परिवर्तित करने की आवश्यकता है, फिर चीजें स्वतः परिवर्तित होती है।
बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, मैं उनको साधुवाद दूंगी इस निर्णय के लिए। तो शारीरिक उपद्रव पर ही अभी बात करते हैं कि जैसे पीरियड्स हैं उसमें 2-3 दिन के लिए आपका शरीर डिसईज हो जाता है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, या किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, ऐसी स्थितियों में किस तरह के योगाभ्यास करने चाहिए?
बहुत बढ़िया। देखिए, जब हम एक एक करके भी समझे, जैसे ब्लड प्रेशर है, मुख्य चीज मैंने आपको एक सूत्र हमारी बातचीत के आरंभ में ही दिया था कि सर्व रोग मलाश्रय, मल ही रोग है, मल ही रोग की जड़ है। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, आप उसको, हम लोग तो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ जब टीचर ट्रेनिंग होती है 500 घंटे फिर योगाचार्य कोर्स होता है, तो उसमें एक बहुत ही परिपक्व ट्रेन्ड योगाचार्य भारत योग के निकलते हैं और काम करते हैं, और उसमें हम थेरेपी भी पढ़ाई जाती है, फिलोसफी भी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी भी पढ़ाई जाती है। और आपको ये जानकर के भी आश्चर्य होगा, भारत योग ट्रेडिशन में मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं जो कि योगाचार्य कोर्स करते हैं, यानी वो पहले डॉक्टर्स हैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, स्टिल वो योगाचार्य कोर्स करते हैं, योग को अपने जीवन में अपनाया। तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारा जो खून है शरीर का वो इतना थिक हो जाता है कि उसका प्रवाह पूरे शरीर में बाधित हो जाता है, अबाधित रूप से नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। या कभी कभी ब्लड थिन है लेकिन तनाव के कारण हमारी नसें जो है वो संकुचित हो जाती है। अभी अगर आपको गुस्सा आ जाए तो क्या होगा, एकदम हम गुस्से में आ जाते हैं और हमारी शरीर में नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, चेहरा भी हमारा लाल पड़ जाता है और फिर पैरालिसिस हो जाता है, कभी कभी हार्ट फेलियर हो जाता है कभी कभी, क्यों, ब्लड का फ्लो बाधित हो गया। तो अब जब वो हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ रहा है, हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब वो कम पंप करता है, थक गया बेचारा हार्ट पंप करते करते, हम कहते हैं ये लो ब्लड प्रेशर। उस स्थिति में योगिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि योग सिर्फ अभ्यास, आसन, बंद, प्राणायाम, मुद्रा तो है, आहार योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो हम थोड़ा सा अपने डाइट का परिवर्तन करते हैं, अभ्यास में ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें विशेष रूप से पवन मुक्त क्रियाएं, यानी हम सारे जॉइंट्स को खोलने की प्रैक्टिसेस और फिर प्राणायाम, जितना ऑक्सीजन का फ्लो होगा उतना ब्लड का फ्लो ईजी हो जाएगा जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगे। यही स्थिति कोलेस्ट्रॉल में है, इवन हमारे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, यानी ये एक ही ग्रुप की प्रॉब्लम्स हैं, इनमें भी जो बार बार मैं कहती हूँ 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट तो लेनी ही लेनी है। भाई देखिए, आप इसे ऐसे समझिए, आपकी दाल में भी कीड़ा लग जाता है उसे भी धूप में रख देते हो, आपके कपड़े में फंगस लग जाता है उसे भी धूप में रख देते हो, ये बेचारा इस पे इतना फंगस लग गया है शरीर, लेकिन इसको हम धूप में नहीं रखना चाहते, क्यों, अरे हम काले हो जाएंगे, अरे तुम्हारा तो बांसुरी वाला भी काला ही है तो काहे की चिंता है, हैं? अगर बाहर से हो भी गए थोड़े बहुत, लेकिन भीतर तो आप स्वस्थ होंगे ना। तो जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ये तो गांठ बांध लीजिए। दूसरी चीज, रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास, शरीर का एक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म काम करता है, तनाव कम होता है, शरीर बेहतर होने लगता है। और फिर कुछ बड़े सरल से प्रयोग हैं, ये तो लॉन्ग टर्म के रिजल्ट देखने के लिए है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। अब जिस वक्त बीपी बढ़ा हुआ है, एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें पैरों को भिगो करके थोड़ी देर बैठ जाइए, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक और प्रयोग योग में किया जाता है, क्योंकि हम स्वर्ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात परम धनम, स्वर्ज्ञानात परम गुह्यम नवादृष्टम नवाश्रुतम, सो दिस इज द साइंस ऑफ स्वराज, हमारा ब्रेथ का साइंस है। तो हर प्रहर में हमारा अलग स्वर चलता है, कभी आप देखेंगे, आप अभी भी चेक करिए, आपका या तो राइट ज्यादा एक्टिव होगा या लेफ्ट ज्यादा एक्टिव होगा, मतलब एक तरफ से सांस ज्यादा आ रहा होगा। तो जब आपका बीपी बड़ा होता है, आप कुछ मत कीजिए, आप दाईं तरफ करवट लेकर के लेट जाए। जब आप दाईं तरफ करवट लेकर के लेटेंगे, आपका चंद्र स्वर यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपका बीपी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम सडन रिलीफ भी योग में पाते हैं, और रेगुलर अभ्यास से हमें परमानेंट रिलीफ तो 100% मिलता ही है।
अच्छा प्रतिष्ठा, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बोन हेल्थ पर भी बात करें, क्योंकि 30 के बाद बोन डेंसिटी कम होने लगती है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, जो स्ट्रेस से भी ट्रिगर होती हैं। क्या इनके लिए हम योगाभ्यास कर सकते हैं?
बिल्कुल, बोन हेल्थ के लिए विशेष रूप से मुझे लगता है कि अभी कोविड के बाद से तो हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि गुरुमा घुटनों में बहुत दर्द है, कोई बता रहे हैं कि हमको तो चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, शरीर में बहुत हड्डियों में दर्द रहने लगा है। तो उसमें हम अपने डाइट में, एक तो विशेष रूप से हमारे मगज होते हैं, 5 seeds हैं, बहुत सरलता से आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाते हैं, मगज को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तिल का सेवन हमको जरूर उसके लिए करना चाहिए, अगेन 20 minutes ऑफ सनलाइट लेनी ही लेनी चाहिए बोन हेल्थ के लिए, और पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, ये आपको रेगुलरली करना चाहिए अगर आप अपने बोन हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं तो। और हमारे आश्रम में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ ऐसी ऐसी स्थिति के पेशेंट्स भी आए कि बस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन प्रभु की कृपा से उनको भी हमने हील किया है। और ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, इसको आप बहुत आसानी से योगिक लाइफस्टाइल अपना करके हील कर सकते हैं। यानी हमको ये पता होना चाहिए, भोजन सामने आए तो अपने आप से पूछो क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं, कब खाऊं, खाऊं के ना खाऊं, ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और जब तनाव आए तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जन्म जो है वो दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, बुद्धिमान हूँ, बलवान हूँ, धीमान हूँ, शक्तिमान हूँ, विद्वान हूँ, है ये आपके रूप है, हम दुख रूप है ही नहीं, हमारा जन्म दुख भोगने के लिए हुआ ही नहीं। बट आज का मनुष्य क्या हो गया, आप किसी से मिले, आप कैसे हैं, बस गुरु माँ कट रही है, बस अभी जरा ऐसा परेशानी हो रही है, हम दिस इज हाउ वी मीट पीपल। हमें थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन आप कंप्लेनिंग मोड से थैंकफुल मोड में आ जाओगे, जब कोई मिले कैसे हो, बस प्रभु की कृपा, सब बहुत बढ़िया, सब आनंद, अगर आपके पास आपकी थाली में भोजन है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, सर पर छत है और आपके पास सांस है, तो यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। फिर बाकी की समस्याएं आप सुधार सकते हैं। सो जब भी मन कंप्लेनिंग मोड में हो, 2 मिनट के लिए बैठे, लंबा गहरा सांस लिया और फिर मन में धन्यवाद का भाव, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आज न जाने कितने लोगों के पास ये सांस नहीं बची, मेरे पास है, मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद का भाव रखता हूँ। दिस वन वेरी शॉर्ट 2 मिनट ऑफ मेडिटेशन ऑफ भारत योग, अगर आप इससे अपने दिन का आरंभ करेंगे, आप देखिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो जरा सा कंप्लेनिंग मोड को ग्रेटिट्यूड मोड में लाने की आवश्यकता।
बहुत सुंदर जवाब, और मुझे लगता है कि लोग अगर इसका अभ्यास करें तो बहुत सारे कष्टों से छूट सकते हैं। हम अपने पॉडकास्ट के एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और अब एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल आपसे करने वाली हूँ। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनको लोग बहुत मानते हैं, जो योगा अभ्यास भी करते हैं और जिनकी आध्यात्मिक शक्तियों और ज्ञान से भी हम परिचित हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाते हैं या जब उन्हें किसी तरह की बीमारी होती है तो बहुत तरह तरह की बातें होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में योग के बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या योग आपको कंप्लीटली निरोग रखने में मददगार हो सकता है, या आपके अपने आपको अपने शरीर को किस तरह से देखना और समझना चाहिए?
देखिए योगिता जी, मैंने आपको आरंभ में एक बात कही थी कि आप बहुत अच्छे आसन लगा लें, खाली आसन लगाने से आप योगी नहीं हो जाएंगे, खाली अच्छी अच्छी बातें करने से आप योगी नहीं हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छी बातें कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैंने उसको अपने जीवन में अपनाया है या नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या कहा कि योगी जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाँ प्रत्यक्ष जब सामने है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो योगी का जो जीवन है, योगी का जो चरित्र है, वो साफ झलकना चाहिए, यानी मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और दूसरी ओर जहां हम कई बार ऐसी बातें भी आ जाती हैं कि नहीं नहीं मेडिकल साइंस दिस मेडिकल साइंस दैट, नहीं, हर विज्ञान का अपना महत्व है, हर विज्ञान का अपना महत्व है, और किसी के भी महत्व को डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे जब आपकी वैक्सीन नहीं आई थी, उसके पहले मोक्षायतन योग संस्थान एक पहला ऐसा योग संस्थान था जिसने कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया, और उसकी प्रति हमें हमने राष्ट्रपति जी को भी दी, और उससे मिलियंस ऑफ लोगों को हमने हील किया है। तो कोई भी पैथी गलत नहीं है, कुछ के एक पैथी में हमें सडन रिलीफ मिलता है, एक पैथी में हमको अलग तरह से रिलीफ मिलता है। पर ये प्रश्न उठा लेना, दरअसल समस्या क्या हो गई है, हम इंसान को भगवान जब बना देते हैं तो हमारा हृदय फिर टूटता है, क्योंकि जो इंसान है वो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसका जाना निश्चित है, और जो गया है उसका आना भी निश्चित है। ये अवेयरनेस खत्म हो जाती है। कई बार लोग ये बात कहते हैं, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि गुरु का कर्तव्य भगवान की प्राप्ति कराना है, गुरु भगवान नहीं है, लेकिन लोगों को ये बात बुरी भी लग जाती है। पर जब आप एक मनुष्य को भगवान मानते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर है तो रोग होगा, तो शोक होगा, किसको नहीं हुआ, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, तब आपके मन से फिर आस्था कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो ये हमेशा स्मरण रखें। चलिए, आपने कहा ना जाते जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम भी आपको जाते जाते एक ऐसा सूत्र दे जाते हैं जो शायद अगर आपके दर्शक अपना ले, जो योग का सबसे बड़ा उपदेश, और वो क्या है, आपके जीवन की सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ ये है कि आप टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीजों की तलाश कर रहे हैं। बस टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीजों की तलाश कर, परमानेंट घर हो जाए, परमानेंट सुख हो जाए, परमानेंट गाड़ी हो जाए, परमानेंट नौकरी हो जाए, परमानेंट रिश्ते हो जाए। पर एक दिन ऐसा आता है जब आपको रियलाइज होता है कि ये तो मैं तो खुद ही परमानेंट नहीं हूं, मैं किस परमानेंसी की तलाश कर रहा हूं। सो वंस यू रियलाइज दैट ईच एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी, योर लाइफ बिकम्स सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। यानी सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, सुख भी परमानेंट नहीं होता, दुख है तो सुख आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। योगिता जी, आप 2 मिनट के लिए सोचिए, आपके लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? सबका एक सुख होता है जो सबसे बड़ा सुख है, हा? सोच लिया आपने? अब 2 मिनट के लिए सोचो सबसे बड़ा दुख क्या है, वो एक ही चीज होगी, उसका होना ही सुख है और उसकी एब्सेंस ही दुख है, पर सुख और दुख आते एक ही जगह से। यानी अगर मेरे लिए मेरा संतान ही सुख है, सबसे बड़ा सुख मेरी संतान, सबसे बड़ा दुख मेरा संतान का छिन जाना। तो सुख और दुख का सोर्स एक ही है, इसलिए योग में हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, दैट आई एम अनएफेक्टेड विद एवरीथिंग। तो सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हैं, टेलीविजन पे आप क्या देख रहे हैं, आप तो उसी जगत से, आपको तो पता है कि कितनी पब्लिसिटी होती है, कितनी सारी चीजें उसके पीछे इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन आपके ज्ञान, ज्ञान तो बहुत है, मेरे मतलब का वो जिससे मैं तृप्त हो जाऊं, तो बस उसको अपना लीजिए। उसके अलावा तो सुख दुख लाभ हानि ये चलता रहा है, ये चलता रहेगा, पर मेरी काम का जितना है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उससे बाहर तो दुनिया इज अ तमाशा विच विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, रंगमंच ही तो है, बस चलता रहेगा और हम उस रंगमंच की कठपुतलियों की तरह कार्य करते रहेंगे।
थैंक यू सो मच आचार्य प्रतिष्ठा, आज आपने बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, आपने हेल्दी जिंदगी पॉडकास्ट के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
ये था हमारा आज का एपिसोड, इसे प्रोड्यूस किया था श्रुति पाल ने और एडिट किया था संजू अब्राहम ने। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं yogita.yadav@hindustantimes.com पर। हेल्दी जिंदगी सीजन 2 पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ। क्योंकि पहला धन निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HTSmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।